Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
उन्होंने कहा कि कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और इस सहस्रार से उन्होंने अपने शरीर को ऊर्ध्व कर दिया। अब वो फटे या न फटे, लेकिन अक्सर योगी अपने शरीर का त्याग करता है इसी द्वारा से, सहस्रार। आपकी वासना का द्योतन है कि आप किस दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। भाई चोर बाहर निकलेगा तो किस दरवाजे से निकलेगा? प्रेमपुरी का पीछे वाला एक दरवाजा है ना? और जब कोई अच्छा आदमी आएगा, बड़ा आदमी आएगा तो किधर से आएगा? सामने से आएगा, सामने से जाएगा, आराम से बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाएगा। इसलिए आचार्य यम कहते हैं, पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्र चेतसः। ये द्वार किसके हैं? तो कथित अजस्य, जो अज है, अजन्मा आत्म तत्व, उसके दरवाजे हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि भैया वो तो अज हैं, अविनाशी हैं, व्यापक हैं, अवक्र चेतस, जिसकी जो चेतना है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, वो सीधी चेतना। और आप बोल रहे कि इसके दरवाजे हैं, इस आत्मा के दरवाजे, तो विरोधाभास हुआ ना फिर। न इसमें जन्म है, न मृत्यु है, न जाना है, न आना है। न तस्य प्राण उत्क्रामंती अत्रैव पिलीयन्ते, श्रुति कहती है ज्ञानी के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। जहां पर ज्ञानी विराज रहा है, ज्ञानी जहां पर है, अत्रैव पिलीयन्ते, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है ज्ञानी। वो तो लीन है ही, और वो ब्रह्म तत्व सब जगह पर है। ऐसा तो नहीं है यहां ब्रह्म तत्व नहीं है तो ज्ञानी को वहां जाना पड़ता होगा। भाई ये बात तो तब बनती जब यहां ना हो, वो यहां भी है, वहां भी है, जहां भी है वहीं। वासना हमें ले जाती है, वासना हमें ले आती है, और वहां तो वासना ही नहीं है। इसलिए घोषित किया वासना क्षय, आपके आध्यात्मिक अनुभूति का एक सर्वोच्च अनुभव है वासना क्षय, और ये वासना क्षय स्वसंवेद्य है। वासना क्षय स्वसंवेद्य है। जब हम साधना करते हैं ना तो धीरे 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 आपके वासनाओं का क्षय होने लगता है। क्षय माने क्षरण, क्षय माने वो माइनस में आते हैं। वैसे माने प्रारंभ में हम जितने वासना में थे, जितनी प्रबल वासना थी, प्रबल वासना, अब वो वासना की प्रबलता कम होते जाते हैं, शिथिल, तनुकरण, ऐसा बोला तनुकरण। आपका शास्त्रीय शब्द है तनुकरण। तनुकरण मैंने कमजोर करना है। आपको एकदम वासना को नहीं छोड़ना है, आप छोड़ती भी नहीं है, वो धीरे 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 धीरे, भले धक्का पुक्की होती होती कि नहीं। अब देखो बच्चे हुए, बच्चों में कोई चॉकलेट बांट रहा हो तो धक्का बुक्की छीना झपटी चलती है, और थोड़े बड़े हो जाते तो थोड़ा कम हो जाता, और बड़े हो जाते तो कम हो जाता है। लेकिन जो बड़े हो जाते तो ठीक है, अब चॉकलेट के लिए धक्का बुक्की नहीं होती, चॉकलेट लिए कोई छीना झपटी नहीं है, और ठीक है, मिली तो ठीक, और नहीं मिले तो भी ठीक है। ये हमारे जीवन भी ऐसे ही है, ये वासना की धक्का बुक्की कब तक चले? छीना झपटी है ये, वासना में बहुत बड़ी छीना झपटी है। और जब साधना साधक करता है तो धीरे 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 वो कम होती जाती है, होना भी चाहिए। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में वो कम होना चाहिए, जलन है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बहुत सारी चीजें हैं। और इन चीजों पर धीरे 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 धीरे, और उसमें बहुत आनंद भी है, सचमुच संघर्ष में आनंद नहीं है। ये संघर्ष अज्ञानमूलक हैं, ये जितने भी बाहर के संघर्ष हैं ये अज्ञानमूलक हैं। और जहां पर अज्ञान है और संघर्ष है, वहां बहुत बड़ा टेंशन है। हम स्वयं निर्मित करते हैं, ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं, हम स्वयं करते हैं समस्याओं को निर्मित, हम स्वयं करते हैं और उसका समाधान दूसरे से चाहते हैं। ये आदमी की सबसे बड़ी विडंबना है। समस्याओं को निर्मित हम स्वयं करते हैं और उसका समाधान चाहते कि किसी दूसरे आदमी से हो। समस्या का समाधान हम नहीं है तो हम अपने आप में एक समस्या है, हम अपने आप में एक समस्या है और वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी हम समस्या है, क्योंकि हम समस्याओं को निर्मित कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, वासना किसकी समस्या है? अच्छा, मेरे को बहुत बड़ा सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ये समस्या किसकी है? भाई, समस्या आपकी है कि मेरी है? ये समस्या मेरी है और उसका समाधान मैं किससे चाहता हूं? उससे। अरे, ये मेरे को देखे उठाई नहीं, हो गया ना? ये आपको देख करके ये सामने वाला उठना चाहिए। ये समस्या आपने बनाई, आपने बनाई, दूसरे ने नहीं बनाई, और इसका समाधान भी आप चाहते। दक्ष प्रजापति बैठे और वो पुराने जमाने के प्रजापति। प्रजापति का मतलब आप ये मत सोचना कि बहुत बड़ा आदमी, नहीं नहीं। अरे, आजकल बोलते ना, ये राज्यपाल, ये कलेक्टर, ये डीएम, ये ऐसे हैं वो, ये पुराने जमाने के ये राजनीतिक पद हैं और उस समय सत्ताधारियों को देवताओं की तरह देखा जाता है। वो सब जगह पर है, आज भी ऐसा ही है। प्रजापति, दक्ष प्रजापति, प्रजापति माने ऐसा ही है, राष्ट्र राज्यपाल जैसा वैसा, और आपके हरिद्वार के क्षेत्र के आसपास, और उसके सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो गणमान्य लोग बैठे हैं, और एक मान्यता बना ली कि भाई सामने वाला कोई बड़ा आदमी आ गया तो आपको उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। बात सही है, सही है, उठना चाहिए, हम भी उठते हैं, अपने से सीनियर लोग आते तो उठना चाहिए, एक सम्मान है, ठीक है। लेकिन कदाचित मान लीजिए कि सामने वाला न उठे किसी कारण से, तो आपको विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। भाई, हजार लोग उठे लेकिन एक आदमी नहीं उठा, उसके घुटने में कुछ दर्द हो गया होगा, कोई पैरों में, कई बार पैर भी जाम हो जाते हैं, कई बार होता है कि पैर जाम हो गया, उठना चाहते लेकिन उठ नहीं पाए, हो सकता। तो आपको व्यथित नहीं होना चाहिए, माने सम्मान का पागलपन नहीं होना चाहिए। सम्मान बुरा नहीं है, सम्मान पाने की भावना भी बुरी नहीं है, लेकिन उसका पागलपन नहीं होना चाहिए, ये तो समस्या है। वही सम्मान भी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और उनको ऐसा लगा कि मेरे को देखकर सब लोग उठते हैं, सब लोग उठते हैं, भगवान शंकर बैठे हैं। अब भगवान शंकर तो समाधि में है, आपके जितने भी देवता है उन सभी देवताओं में आपको अंतरंग और समाधि से देवता कोई मालूम पड़ते तो केवल भगवान शंकर। आपके भगवान विष्णु भी अपने आराम फरमाते रहते हैं, उनको तप करने के लिए जाना पड़ा बद्री नारायण बन के। उन्होंने कहा कि भैया, यहां तप नहीं होने वाला है, यहां तो इतनी आराम देह, ये गद्दी, शेषशाही और इतना ऐश्वर्य, साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी मैया। बोले, छोड़ो, आप इसको चलते हैं। और फिर बद्री नारायण, वो तप वाले जो भगवान है ना, अरे बहुत सुंदर, आप जब जाए तो वहां शयन आरती के दर्शन जरूर करें, या सुबह जो भगवान का अभिषेक होता है उसको, आपको जो आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो विग्रह है ना, उसके दर्शन हो जाते, और वो पद्मासन पर, पूरे भगवान पद्मासन पर, बहुत सुंदर पद्मासन। भगवान शंकर तो हमेशा समाधि में रहते हैं, और जब समाधि का अनुभव आदमी का होना, तो फिर आदमी जहां भी बैठता है समाधि से बैठता है, तो समाहित होता है, भगवान शंकर में बैठे समाहित हो गए। अब भगवान शंकर के लिए कोई आए जाए, सबके प्रति सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन जब दक्ष प्रजापति आए तो उठ नहीं पाए, ठीक है, दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध है, बड़ा क्रोध आया। देखो हजारों बार उनका सम्मान किया गया, हजारों बार भगवान शंकर ने हजारों बार उनका सम्मान किया और एक बार नहीं किया, वो एक बार नहीं किया हुआ भारी हो गया, एक बार नहीं किया हुआ भारी हो गया। और उस समस्या उनकी थी, समाधान वो भगवान शंकर से चाह रहे। आदमी के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, समस्याओं को निर्मित स्वयं करता है, समाधान दूसरे से चाहते हैं। और इसलिए सबसे बड़ी समस्या दूसरा नहीं हम है। इसलिए धीरे धीरे सारी चीजें कम हो जानी चाहिए। समझदार होने का अर्थ यही है, आध्यात्मिक होने का अर्थ यही है, जब हम अपने भीतर के संघर्ष अंतर्द्वंद्व विकार वासना वो धीरे 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 कम करते हैं। और ये सारी चीजें जब कम हो जाती हैं, साधना से हो जाती हैं, आप मत सोचना सब में, आप ये जितने भी सत्संग में बैठे हैं ना, लोग अक्सर बोलते हैं हमको बड़ा बुरा लगता है, अरे बोले सत्संग में जवान लोग नहीं आते हैं। अरे लोग आते हैं तो क्या कम है क्या? ये तो हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है संन्यास की। संन्यास कौन लेते थे पहले भाई? संन्यास कौन लेते थे अपने यहां? तो चार परंपरा है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो संन्यास कौन लेते थे भाई? वो चतुर्थ तृतीय को पूरा करके चतुर्थ में संन्यास लेते, चतुर्थ आश्रम। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जीवन भर बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं कि बुरे बुरे किए काम, ऐसा नहीं है। आपके जीवन से बहुत अच्छी चीजें घड़ी, आपने बहुत अच्छा अच्छा काम किया और उसके बाद फिर चतुर्थ में प्रवेश किए, अब आवश्यकता बनी। एक महात्मा जी थे, बोलते थे 40 साल के बाद ही वास्तविक योगी होता है, सब बोलते थे। बोले छोड़ो, बहुत कम उम्र वाले भी लोग साधु महात्मा हुए, लेकिन बोलते थे वास्तविक भगवान का भजन साधना 40 साल के बाद। क्यों? जिया, उन्होंने जिया, भोग वासना कुछ कम हो गए, मालूम पड़ी दुनिया क्या है। और उस समय आपको वहां प्रवेश करने में सरल होगा, इसलिए आप घबराना मत, उम्र से भी नहीं घबराना चाहिए। ये उम्र निर्वसन मोक्ष की अवस्था में जाने के अनुकूल हो गई, अब अनुकूल हो, वासना का क्षय होता है, भोग भोगते है ना। मेरे को लगता है कि कुछ ग्रंथि में अटके हैं हम लोग, ये जवान लोग चाहिए, ये लोग चाहिए। अक्सर वो ठीक है, बच्चों को संस्कार देना चाहिए, युवाओं को भी संस्कार देना चाहिए। अरे एक अपने आश्रम में ऐसा ही कुछ महात्मा थे और उन्होंने बड़ी खिली उड़ाई, बहुत खिली उड़ाई कि ये बूढ़े लोग ऐसा वैसा, अरे कोई जवान नहीं आता है। बोले लास्ट में आए हैं, घिस पिट गए, फिर आ गए सब। वो एक दूसरा महात्मा था, उसने कहा क्या बोल रहे हैं? बोले क्या बोल रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि हमारे राजा महाराजा पुराने जमाने में बड़े बड़े ऋषि मुनि बने और सब चतुर्थ अवस्था। भरत कितने अवस्था के थे? भरत कितने अवस्था में पहुंचे? चतुर्थ अवस्था में, और वो भरत बन गए साधना करते। आपके विश्वामित्र वो सारे चतुर्थ आश्रम के। उन्होंने कहा कि क्या बोल रहे, ये सारे जो लोग, ये ऋषि मुनि, ये हमारे ये वृद्धाश्रम के ऋषि मुनि लोग हैं, ये सन्यास्त लोग हैं। ऐसा नहीं ये कपड़ा लेने से कोई सन्यासी होता है क्या? आप लोग जीवन जी रहे हैं सन्यासी की तरह, इसलिए धीरे 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 प्रोग्रेस होता है ना। समझ आपने को अंदर से वो जागृत करना है कि हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे होने का विल पावर जगाना चाहिए और हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए। हाय हाय हाय, आप अंदर से समझो हम सन्यासी हैं। हमारे गद्दी पर मत बैठना नहीं तो कल बोलेंगे भैया ये परंपरा है। लेकिन अंदर से आपको समझना है क्या हो, ठीक है, अच्छे संकल्प को पैदा करना चाहिए। ये आपका वेदांत क्या है? अच्छे संकल्पों को पैदा करने के लिए तो है अजस्य अवक्रचेत साहब। भाई आप क्या है? आज हैं, आज कभी मरने वाले नहीं है, तो बूढ़े हैं कि नहीं आप? कौन बूढ़ा? अरे तो शरीर है, और शरीर तो हमेशा बूढ़ा ही होता है, ये तो आपकी दृष्टि में ये जवान है, ये बूढ़ा है, ये तो आपकी दृष्टि है, एक स्वप्न की तरह है। आप हमेशा आत्मा है और उस आत्मा में कुछ होता नहीं। आपके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करना चाहता है शास्त्र, आपके अंदर दिव्य दिव्यता को पैदा करना चाहते हैं आचार्य यम जो उपदेश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज पैदा करना चाहते। आप आत्मा है और आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु होती है, इसको जानना है केवल। और बुढ़ापे में वैराग्य होने के ज्यादा अवसर है यदि आप सही सही चल रहे हैं, तो आपको वैराग्य हो सकता है, बहुत अच्छा वैराग्य हो सकता है, आपको मालूम पड़ गया भैया बस बस बस। आप दुनिया में कितना खाया और छोड़ो, खाने के प्रति वैराग्य छोड़ना नहीं है, खाना है लेकिन वैराग्य पूर्वक आपको रहना है वहीं पर घर में वैराग्य पूर्वक। आप सोचो अब हम आश्रम में नहीं, आश्रम में रहते घर में नहीं रहते, हम कहां रहते हैं? अरे आश्रम तो है ही गृहस्थ आश्रम। हां गिरीश भाई आप जहां रहते हो तो आश्रम है ही, गृहस्थ आश्रम है। और शास्त्र ने कहा कि भैया संन्यास आश्रम ही आश्रम नहीं, आप जहां रह रहे वो भी क्या है, लेकिन आप तो मानो आप आश्रम में रह रहे हैं, या आप मानते हो कि नहीं? आप अपने अंदर से आत्मविश्वास पैदा करो कि हम जहां रह रहे हैं वो क्या है, आश्रम आश्रम। ओ बस काम हो गया आपका। अब आपको मालूम है कि आश्रम में कैसे रहा जाता है, और धीरे 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 अपने मन को उर्धुगामी में बना लेना चाहिए। वो खाने का पागलपन, बोलने का पागलपन, पहनने का, ये बोलने का भी बहुत, अब वो छोड़ो जो भी हो रहा है। एक महात्मा जी थे, एक किसी को अपने चेले को महंत बना दिया, तो लोगों ने आके सुनाया कि वो बड़ा बकवास आदमी आपने महंत बना दिया। अरे बोले बहुत, वो आश्रम को चलाता नहीं। महात्मा जी बोले कि हमको क्या मतलब है अब, बोले वो आश्रम उसको सौंप दिया, वो चलाए न चलाए हम तो भजन करते हैं, हमने तो पहले ही छोड़ दिया है। पहले ही छोड़ दिया मतलब बनाने के पहले उन्होंने कहा कि अरे हम बनाने के पहले भी नहीं समझते थे और आज भी नहीं समझते मेरा, अब हम आत्मा में स्थित हो गए, हम परमात्मा में स्थित हो गए। अब तुम्हारा आश्रम जानो, तुम जानो, जिम्मेदारी तुम्हारी, और हम हमारी आसक्ति ने हमने बनाया ठीक होना चाहिए, सबसे बड़ी आसक्ति ही होती है। वैराग्य धारण करने के लिए ही ये सारी चीजें हैं, आपके सारे शास्त्र हैं। और सबसे ज्यादा कीमती यदि कोई चीज है अध्यात्म में वैराग्य, आपकी योग साधना वैराग्य के बिना संभव नहीं, आपकी धर्म की साधना वैराग्य के बिना संभव नहीं है, आपकी ज्ञान की साधना वैराग्य के बिना संभव नहीं। आपकी कौन सी साधना है जो वैराग्य के बिना है? और ये सारे शास्त्र आपको बोलते हैं ये शरीर तुम नहीं हो, ये किस लिए बोलते हैं? ये वैराग्य के लिए है। सबसे बड़ी चीज है ये नश्वर के प्रति निराशक्ति पैदा हो जाए, नश्वर के प्रति वैराग्य पैदा हो जाए, तभी शाश्वत के प्रति आपके मन में प्रेम पैदा हो सकता है। ये बहुत ऊंची चीजें हैं, ऊंची चीज आपका जो वेदांत है, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रेम पूरी आश्रम और पूरे मुंबई में ऐसा आश्रम है, और इस आश्रम में बड़े दिव्य लोग थे, बड़े भारी दिव्य लोग। एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था, उन्हें हरि भाई देशवाला अपने गिरीश भाई जी के पिताश्री, और वो क्या साधु पुरुष थे, इस प्रेमपुरी को जीवन देने वाले महापुरुष। हमने सुना, हमने नहीं देखा, लेकिन वो महात्माओं के पास जाके सुनते थे, उनको मालूम पड़ा कि कोई महात्मा घाट कोपर में प्रवचन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उनको मालूम पड़ गया क्यों, और वो बोलते भैया चलो चलो चलो, हम उस साधु का प्रवचन सुनते स्वाध्याय, वो जाके सुनते पीछे बैठकर, और उनको बहुत अच्छा साधु लगा। हो वो प्रार्थना करते थे महाराज हमारे प्रेमपुरी में आएंगे, स्वाध्याय में आएंगे, आपको क्या चाहिए आप जो सुविधा बोलो हम आपको देंगे, हमारे यहां स्वाध्याय में आओ, हमारे यहां पर प्रवचन दिया। वो क्या महत्व, माने प्रेमपुरी की आत्मा को जगाने वाले हैं ना महापुरुष। वेदांत के प्रति अगाध समर्पण, संस्कृति के प्रति अगाध समर्पण, और तब ये आज आपको एक प्रेमपुरी नामक इतना बड़ा पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सिंचन करने वाले लोग दिखते नहीं है, लगाने वाले नहीं दिखते। कई बार बहुत आपका सौभाग्य है प्रेम पूरी, और यहां तो सारी चीजें मिल जाती है। वेदांत भी मिलता है, योग भी मिलता है, धर्म भी मिलता है। अभी आप तीसरे माले में धर्म की बात, पूजा पाठ पंच देवोपासना, कल भी बड़ा आनंद आया। बहुत ऊंची चीजें हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक चीज होना चाहिए और वो ईमानदारी। कोई भी काम करो ईमानदारी से, और अध्यात्म में सबको अपना समझो, सबको अपना समझो। मैं एक 10 सेकेंड का टाइम ले लेता हूं आपका। जब मैं 40 दिन की पदयात्रा कर रहा था, तो यात्रा के क्रम में मेरे जो साथी थे, जो सारी यात्रा की देखते थे, बहुत बड़ी यात्रा थी, 10-10 हजार लोगों की भीड़ रहती थी, मेरे साथ भी 200-300 लोग चल रहे थे। तो मेरे साथ वाला बोलता था कि महाराज ये गांव है ना, कबीर पंथियों का गांव है, छोड़ आगे बढ़ो, ये है। मैंने बोला क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा आज के बाद तुम ये मत बोलना, मेरे लिए ये सारे अपने लोग हैं, देश मेरा है, और इस देश में रहने वाला हर आदमी मेरा है, मेरा है। कोई कबीरपंथियों को मैंने कहा वहां चलो, ये अपने लोग, अपने लोग हैं। यहां तक कि जैन बड़े बड़े मंदिर वहां पर रास्ते में पड़े, हमने कहा ये मंदिर हमारा है, ऋषभदेव जी महाराज भगवान के अवतार थे, चलो हमारे। लोगों ने कहा कि जैन मंदिर में नहीं जाना चाहिए, हाथी आए और हाथी के पैरों के चलो कुचल के मर जाना चाहिए, लेकिन हाथी जैन मंदिर में नहीं, ऐसा लिखा है, पता नहीं कहां लिखा है। हमने कहा चलो ये पुरानी बात है। और जैसे हम लोग गए, क्या साधु ने, दिगंबर साधु थे, अरे उठ के खड़े हुए, अरे बोले बाबा आप आ गए, आप आ गए, अखबार में आपकी बात सुन रहे थे। वहां तो फिर झगड़ा शुरू हो गया, बुद्ध श्वेतांबरियों ने कहा कि महाराज हमारे यहां क्यों नहीं आए। बोले दिगंबरियों के यहां, बोले वहां गए, हमारे यहां क्यों नहीं आए। फिर वो 4 किलोमीटर बाहर आ गए मिलने के लिए, बाबा बोले क्या गलती है, हमारे यहां नहीं आए। मुसलमान स्वागत करते थे, मुसलमानों ने कहा कि साधु हमारे लिए यहां है। मैं ये बात, अपना सोच क्या है, आपका वेदांत क्या सिखाता है, आपको छोटे दायरों से ऊपर उठाता है। यहां पर किसी भी माले पर और किसी भी यजमान के द्वारा यदि आध्यात्मिक कार्य हो रहा है तो अपना है, वो प्रेमपुरी का अपना है। चिमन भाई जी, आपको ये नहीं सोचना चाहिए भैया वो ऊपर वाला जो गिरी जी का है, वो ये जो ये हमारा है, गए काम से। आपका उद्देश्य क्या है, वो प्रोग्राम किसका है, बोले उमा जी ने किया है, उमा जी ने, बोले ठीक है, बाकी के अरे ठीक है वो उमा जी का है, मतलब क्या है। नहीं नहीं, ये सारी चीजें आप गिरी जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, अखंड ये, या 5 खंड है लेकिन यहां एक तत्व है अखंड। ऐसा आश्रम, ऐसी विचार, ऐसी भावनाएं बहुत अद्भुत हैं। ये प्रेमपुरी आश्रम एक हमारे जीवन के लिए वरदान है, वरदान। ओम ह्रीम नमः शिवाय, 11 बार हम जप करते हैं इसका, आज पूर्ण होती है। फिर मिलेंगे हम लोग सबके भीतर विराजमान आत्मसत्ता को अभेद रूप से हम नमन करते हैं। ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ॐ ह्रीं 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 नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। बड़े भावपूर्वक यह दिवस हमारे बीच में पूज्य महाराज जी जभी जभी रहे। एक आत्मभाव रहा, पहले ही दिन मैंने बताया था कि महाराज जी को जब भी हम सुनते हैं तो लगता है कि हम मौन होके जो भी विचार है उनके उनको ग्रहण करें तो जीवन में क्रांति आ सकती है, उसका अनुभव हमने शायद कर लिया होगा। महाराज जी ने सुंदर जाप करवाया, 11 लाख का संकल्प 15 लाख हुए। महाराज जी के प्रवचन से एक बात बहुत प्यारी थी, कबीर जी ने मशाल लेके निकले, हजारों लोगों की भीड़ उनके पीछे गई ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, लेने के लिए, एक ही को ब्रह्म ज्ञान मिले। जब भी हमारे जो पूज्य स्वामी जी महाराज है उन्होंने प्रण कैसा लिया कि जहां जहां यह उनकी वाणी पहुंचे उनके वहां, उनके परिवार के वहां, बच्चे से लेकर युवा सभी माला करते होंगे, तो उस मशाल से यह माला की ऊंचाई कितनी, जहां हजारों की भीड़ की जगह लाखों मालाएं घूमी। कहीं महाराज जी ने कहा कि संत लोग बोलते हैं नौजवान नहीं है, तो यह जो महाराज जी की वाणी हर घर में पहुंची होगी, हर घर में वह माला, वह दीपक, वह ईश्वर का नाम चला होगा, जाप हुआ होगा। बाबा रामदेव का मुझे याद आता है, सर्वप्रथम बार हमारा व्यापारियों का महाराज जी मैंने स्वागत किया था योगी सभागृह में, सबसे पहला सौभाग्य, क्योंकि वहां भी थोड़ा यही नाटक है, कुछ कुछ न कुछ उसमें है। हम मेरा बड़प्पन नहीं है मगर ये आपका सब आशीर्वाद है। तो जब उनका सबसे पहला बम्बई में स्वागत प्रवचन करने का मौका मुझे मिला तो मैंने रामदेव जी से, जब हजारों लोग की भीड़ थी उसमें यही कहा कि बाबा रामदेव जी ने अगर सबसे अच्छा कार्य किया हो तो यह कार्य है कि घर घर में ओम पहुंचाया, योग के माध्यम से लाखों करोड़ों से भी ज्यादा लोग ओम, न उसमें जात था न पात था न भात था, तो इतना पुनीत कार्य जो बाबा रामदेव ने किया। बाद में हमने वो स्वामीनारायण मंदिर में दोनों साथ में अकेले गए, अभिषेक किया, तो संत जितने भी कितने भी हमको लगे कि इतने ऊंचे हैं ये है, मगर वह ऊंचे हैं उनके विचार से, आचार से, और जो समाज को देते हैं वह हम लौटा ही नहीं सकते, उनको लौटाए तो यही करके कि हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हम विश्व में कहीं भी जाए तो यह समझ के जाए कि यह संतवाणी हमें प्राप्त है। और उसको जो कल महाराज जी ने थोड़ा विनोद किया था बफेलो के लिए, जो भी शाम को होंगे खाने के लिए जो बुफे होता है उनको बफेलो करके महाराज जी ने बताया। फिर हम दूसरी मंजिल पे बैठे थे संतों के साथ, तो मैंने बोला कि महाराज जी बफेलो जो होता है वह भले कितना भी गंदा खा ले मगर बाद में दूध देता है और दूध से हमारा स्वास्थ्य बनता है। हम लोग भी मान लिया बफेलो बुफे खाए ना खाए कुछ भी हो, मगर जो ज्ञान प्राप्त यहां करते हैं उसकी जो गंगा है वह हम लोग घर में समाज में फैला है और प्रेमपुरी का एक हम चेहरा है वह लेके घूमे, तो मुझे लगता है कि हर क्षण ऐसी संतवाणी को हम पूजनीय मानते हुए समझते हैं कि हम कुछ राष्ट्र का, विश्व का, अपना कुछ भला कर सकेंगे। हम आपसे, आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि तीन दफे हम शांति से ओम बोलेंगे और उसी से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए आगे के कार्यक्रम की ओर जाएंगे। अगले वर्ष इसी समय हमारे बीच में रहेंगे 2016 में।